और अर्जुन तैयार होकर के अपना रथ मनुष्य भी उठा लिया। यदि कोई आएगा तो उसे लड़ेंगे। बलदेव जी ने सुना कि हमारी बहन का इसने ये कर दिया, भगा दिया, पड़े बिगड़े और फल कुशल लेकर के सारी सेनाओं के साथ में अर्जुन के ऊपर में चढ़ाई करने की सोचा। किंतु देखा कि कृष्ण कुछ नहीं बोलता। उस समय कृष्ण ने बलदेव जी से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? तो हमारी बहन सुभद्रा का इसने हरण किया, तुम देख नहीं रहे? असुख क्या हो? तो मैं क्या करूँ, यही वीर लोग ऐसे ही करते हैं। मैं भी तो रुक्मिणी को हरण किया था, आप मेरी सहायता के लिए क्यों गए? मैं भी वीर की तरफ में रुक्मिणी जी का हरण किया और उस समय आप सेना दे करके और हमारी सहायता करने के लिए गए, लड़े, उनको हराया। फिर शाम बने, मेरे पुत्र शाम बने हस्तिनापुर में दुर्योधन की लड़की का अपहरण किया और उसमें भीष्म इत्यादि ने उसको कैद कर दिया। तो आप गए उसके तरफ से लड़ने के लिए और हस्तिनापुर को खींच करके और यमुना जी में गंगा जी में दे दी, इसलिए आज तक के लिए आपने ऐसा क्यों किया? तो अर्जुन ने किया। और दूसरी बात, आप जाकर के अर्जुन को मारने में समर्थ हैं, किंतु मैं देख रहा हूं कि घोड़ा को कौन चला रहा है? देखो तो मेरी समझ से रुक्मिणी ही
नहीं है
अर्जुन का अपहरण कर रही है। और यदि मारेंगे अर्जुन को तो अब तो वो नहीं किया, अब वो विधवा हो जाएगी, तो आपकी बहन तो विधवा हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो चाहते हैं तो उन्होंने हंस दिया और बोले, तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तुम लोग सब इच्छा है तो आपके घर से सभी डरते हैं, इसलिए नहीं कहा। सबकी इच्छा है कि अर्जुन के साथ भी जाए। तो ये मतभेद भौम लीला में हो सकता है पर जगत में नहीं, क्योंकि बलदेव जी और कृष्ण एक ही हैं। लीला के लिए अभी यहाँ पर दो। दूसरी बात, महाभारत का युद्ध समाप्त होने जा रहा है और इस समय जब सब उसके भाई रक्षक सब दुर्योधन के मारे गए तो कुरुक्षेत्र में सरोवर के अंदर में छिप गया। वो विद्या जानता था, पानी के अंदर में छिप गया और निकले नहीं। चरवाहों से पता लगा भीम और उन सब लोगों को, कृष्ण को जो इधर ही गया है सरोवर में छिप गया है। तो भीम वहां पर जाकर के सरोवर में के पास में गर्जन तर्जन करते हुए बोले, तू सब तो मारे गए और तू डर के बारे यहाँ पर छिप रहा है, डर को तो पहले ही विचार क्यों नहीं किया? द्रौपदी जी के चिरहट क्यों कराया? हमको लड्डू खिलाया किस लिए? अब निकलो। अब वो सह नहीं सका। पानी के अधिष्ठात्री देवी ने उनको मना कर दिया, आज रह जाओ, किसी प्रकार से कल जाना, उनको कोई नहीं मारेगा। तो उत्साह नहीं सका, निकला। तो उसने कहा कि मैं किससे लड़ू, युधिष्ठिर राजा है और मैं अकेला। विषम भी युधिष्ठिर बोले, जिसे हम दोनों हम में से किसी से लड़। कृष्ण कहा, ये तुमने क्या किया? यदि तुमसे लगा तुमको तो मार डालेगा, ऐसा क्यों कहा? फिर युधिष्ठिर को कान में कह दिया कि हम लोगों का राजा भीम है, इसके भीम के साथ में तुम राजा हो। अच्छा तो राजा है तो तुम उनको प्रणाम करो, भीम को यदि वो प्रणाम करेंगे तो वो मर जाएंगे, किसी को भी प्रणाम करने कृष्ण कहते हैं। कृष्ण ने भीम को अपनी गोदी में ले लिया और लेकर के काली जी को प्रणाम किया। भीम ने युधिष्ठिर जी ने भीम को प्रणाम किया, भीम को नहीं कृष्ण खड़े थे पीछे, इसलिए भीम बच गए। और फिर युद्ध हुआ समाधान, कृष्ण ने छल से गंगा को जितलाया क्योंकि कमजोर वही था, मारा वहीं पर और इसी समय में बल दे दिया। भजन व्यक्ति बड़े क्यों भी हमने भीम को भी सीख लाया है जो दस को मैंने ये बताया कि कदाचित तुम्हें कमर से नीचे नहीं मारना चाहिए, तुमने क्यों मारा और मुसल लेकर के उनको मारने के लिए चाहिए। कृष्ण ने कहा आप हैं बलवान, आप मार सकते जिस दिन पर नावत नगर में इन लोगों ने आग लगाई उस समय आप कहां थे, उस दिन क्यों नहीं आए, द्रौपदी का चीन हरण हुआ उस दिन आप कहां थे, सो रहे थे उस दिन क्यों नहीं आए। अभिमन्यु को सब लोगों ने मिल करके कसरियों में और मारा, सब लोगों ने मिल करके एक जीव को अकेले ही इसके साथ थे। उस समय आप कहां सो रहे थे, उस जब जब अत्याचार हुए उस समय तो आए नहीं, आज आप आए, यह सुनते ही लज्जित हो गए और लज्जित होकर कहिए अब जाइए तीर्थ यात्रा में, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या थी। बस ये भी मतभेद देखा जाता, ये मतभेद देखा जाता है कौन लीला में, पर जगत में वैकुंठ की जगत में तो लोग वृंदावन में ये मतभेद जो वहां पर है एक ही शरीर जैसे, इसलिए संक्षेप में दो बातें बताई और कलीला क्षेत्र के संबंध में सब कुछ लोगों ने बताया, ये गुरु तत्व है, भगवत तत्व भी है, भगवान के प्रकाश भी है। कहो समय हो गया हो बाकी हो कृष्ण महाप्रभु जी आए कि प्रचार कौन किया, महाप्रभु ने स्तुति की और उन्होंने अपने संतों ने ऐसे भी डरते डरते कांपते कांपते कुछ किया। माधवेंद्र पूरी पास की प्रेम भक्ति के अंकुर थे, प्रेम बल सतर रूप गोस्वामी की कृपा से ही वल्लभ संप्रदाय फल जी ने भी राधा जी का पढ़ा, कृपया जी जैसी राधा माधी के उनके संप्रदाय में केवल पांच का ग्रहण करती है, किंतु रूप गोस्वामी जी की कृपा और उनके कृपा पात्र रघुनाथ दास जी की कृपा से उन्होंने श्याम सुंदर श्रीखंड से उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर भी कृपा की, उन्होंने सिद्धार्थ माधव या ललित माधव लिख करके उनको
दिया, ललित माधव लिख उनको गिरा के बाद
तो उनको गिरा में धड़कने लगे, दिन रात रोने लगे और पुस्तक छोड़े नहीं, पुस्तक नष्ट न हो जाए उसके पेट फूल न जाए आंसुओं से, उन्होंने लिखा रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने क्या लिखा, रूप गोस्वामी के जितने विचार थे स्वरूप नाम विशेष के रूप उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में पाए और रघुनाथ दास गोस्वामी से रूप गोस्वामी के सारे विचार को ही कृष्णदास को ज्ञान, इसलिए सब पर रूप गोस्वामी का प्रभाव और रूप गोस्वामी की रूप मंजरी ने कृष्ण ने किया। उस समय में कृष्ण को राधा जी को रसास्वादन किया, उनकी सेवा की, किंतु लोगों को साधारण जनता को कैसे ये प्रेम लाभ किया जा सकता है नहीं बतला, किंतु रूप गोस्वामी के रूप में महाप्रभु जी की स्तुति प्राप्त करके सत्य योग चैतन्य महाप्रभु के प्रति को भाव बहुत कुछ इसलिए दुर्गाचार्य ने केवल नौ रस बदलाए, श्रृंगार रस को नहीं दिया। श्रृंगार रस में नहीं होता है पार्थिव भाव, सुंदर पुत्र और पार्थिव नहीं बढ़ने
उनकी श्रृंगार,
किंतु उनको समय ने किया शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर पति सुखाश्रय और भ्रात से प्राण समान पति रंग के अंत अच्छा। और इसके बाद में जितने रामपंच अध्याय के श्लोक हैं, भगवत गीत के हैं, गोपी गीत के हैं, सब ये पार्थिव भाव उन्होंने सबको श्रीमद भागवत में भागवत अपने कुजल नदी में उसकी प्रमाण पुष्टि के लिए सबको प्रस्तुत। इसलिए रूप गोस्वामी के रूप में उन्होंने जो महाप्रभु की कृपा का वितरण किया, यदि वो नहीं रहते तो महाप्रभु आकर के चले जाते, उनका वैशिष्ट कोई जानता नहीं। जब कलि वे जब वन में फूट खिलते हैं तो घोड़े नहीं आएंगे तो उनको कौन उसका रस देगा, कौन विचार करेगा। जब रूप गोस्वामी नहीं आते तो महाप्रभु के इन विचारों को किस प्रकार से जगत में कौन प्रचार करता और बदलता, जैसे महाप्रभु का वैशिष्ट है। राधा भाव गुप्त वृद्धि कृष्ण स्वरूप है, ये कौन कहा? राधानंद जी को रूप दिख रहा है किंतु उन्होंने नहीं कहा। साधु भट्टाचार्य को भी दिख रहा है, उन्होंने भी नहीं कहा,
मना कर दिया, उन्होंने
मना किया। लेकिन को भी तो मना किया, जैसे क्या अमृत में किस बोल रहा है। इन्होंने कहा और भी लोगों में उन्होंने बंधन किया। इस तरह से रूप गोस्वामी जी नहीं आते तो महाप्रभु का प्रचार ही नहीं होता, और कोई नहीं समझता कि महाप्रभु कौन थे, किस लिए आए। जैसे सीधा प्रभुपाद नहीं आए होते बत्तीस दिन धारण कर, तो भक्ति ठाकुर खड़े रह जाते भक्ति के अंदर, उनको कोई जानता नहीं, उनके व्रतों को कोई नहीं जानता, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के इन वैशिष्टों को जगत में भीषण करके जगत का विशेष करके हम अभी वहां पर बोले थे वृंदावन। यदि ये चीज को समझना है तो उसके सामने पहले समझो, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे, वैष्णव निंदा करेंगे, वैष्णव का तब उदान जानते नहीं है, कहीं रहेंगे तो जहां भी रहेंगे पूरा पाठ करेंगे वैष्णव की निंदा कर। उसे क्या होता है, संसार की वासना जन्म दी है और महा अपराध होता है। ऐसे लोगों को मठ में रखना ही उचित, जो कोई निंदा करे वैष्णव की धर्म के कारण उसको उसी क्षण में हम मठ से निकाल देंगे, उसको रखेंगे। पहले अपना दोस्त देखो, जो अपना दोस्त नहीं देखता, भक्ति के लिए नहीं आया है, वो लोग रूप गोस्वामी के शिक्षाओं को पालन नहीं करते। उन लोगों का स्केडो आज फैस रहा है, कोई अपम दास अपम क्यों नहीं पड़ गए, ऐसे भी वैष्णव की निंदा करने वाले हैं और भजन नहीं करते, उनको फुर्सत नहीं है कि वैष्णव निंदा क्यों करते, कोई सेवा काम कोई सेवा ही काम नहीं। तो ऐसे लोगों को मठ में नहीं रखना है, उनके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है, जीवन बदलो। और पहला श्लोक भाग देव भोग देव युवा देव दूसर देव especially I hear from western lady, most of them they come to select their
husbands, select catch,
why not in western part? So I request you all to sit together and to see any way should have something to do and they should have select their husbands here. They should select husband in Western country. Then, Bhat Mai, Kurud Mai, Yuva Mai, Udhar Mai, Rupat Mai, all will go. Arthat, Uttaha, Nimtya, Vaitya, Artika Satkar, Pusat na mile ke kisi ki ninda, ye sab se bada. Vaishnav ka kanishth, madhyam, और उत्तम लक्षणों को जान करके जैसा उनमें योग्यता गुण है उसी के अनुसार में उनका
सम्मान
सम्मान वरिष्ठ का जैसा सम्मान कर रहा है उत्तम का भी वैसे ही किया कि अपराध हो जाए और यदि वरिष्ठ नहीं जानता है तो उसका पाप इसलिए समय मत रखो यदि किसी की निंदा करने का हमको समय नहीं लड़ाई झगड़ा करने का छात्र ये सब है ये हम शिक्षा दे रहे हैं टीचर के रूप में ठाकुर जी का मंदिर में नहीं होगा ठाकुर जी नहीं कहेंगे जैसे तुम अपराध मत करो क्या लाख अपराध करो वो चुपचाप मध्यम अधिकारी ऐसा नहीं करेगा वैष्णव ऐसा नहीं करेगा उसको देख देगा बचाएगा शासन करेगा ग्रंथ भी देगा ठाकुर जी कुछ नहीं करेंगे जो कि आप करते यदि कुछ करना होगा तो मंदिर मंदिर से कर विराज की गोवर्धन की परिक्रमा करने में वो भी नहीं कर पाए क्योंकि वो भी ठाकुर जी है इसलिए वैष्णव के हर वक्त निरख करके रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का पालन और अंत में यही है सदन नाम रूप चरितार्थ सनामी रमेश रस नाम वृंदावन में रहो कृष्ण की आराधना करो भजन और गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है जो सेवा भावना है वही आदर्श सबसे सर चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं पात्र आज और कृष्ण तत्व के संबंध में
महाराज श्रीमान जगदानंद ब्रह्मचारी और वैदिक सत्ता के मुख से कृष्ण तत्व के संबंध में सुना बहुत अच्छे ये लोगों ने कहा विशेष करके सब प्रमाण हमारे बन महाराज जी ने बतलाए जगदानंद जी का प्रश्न यह है ये कृष्ण के अंदर में सारा विश्व है जब कृष्ण के अंदर में सारा विश्व है और कृष्ण सच्चिदानंद अजर अमर है तो ये जगत उसमें है तो ये कैसे ध्वंस हो जाता है यही प्रश्न है ना क्या क्या है तो समझो जो कृष्ण में अचिंत शक्ति है वो अचिंत शक्तिमान है और गीता में लिखा है सारा जगत मुझ में है और मैं सारे जगत में हूँ और फिर इसके बाद में कहते हैं मैं उनमें हूँ और नहीं भी तेषु
नामी जगत वसी जगत आमाते चौचल चौचल
मित्र हाँ गीता में एक श्लोक है
तेषु तेषु हम
न
तेषु तेषु अचिंत भेदा भेद कृष्ण सब जगह में रहते हुए भी जगत से बाहर है जगत से बाहर रहते हुए भी इसलिए अपने अचिंत शक्ति से उनके शरीर में रहने वाली ये जो जगत है कौन जगत जड़ जगत जो सब समय ध्वंसशील है उसका विनाश देखा जाता है वो भी विनाश को समझना चाहिए विनाश क्या चीज है विनाश का तात्पर्य क्या है खेत में गेहूं उपजाया और बीज को अलग कर लिया इसको अलग करके रख दिया और जो घाट था घाट को क्या किया, जला दिया,
गाय को खिला दिया,
गाय को खिला दिया या जला दिया, फिर वो सार हो गया और वो जो बीज था उसी में बो दिया फिर हो गया, तो नष्ट कहाँ हुआ। इसी तरह से ये जगत का ऊपरी जो भौतिक रूप है उसको समाप्त करके और वो जो जीवात्मा है वो ठीक रहते हैं, उनका विनाश नहीं होता, वो फिर ब्रह्मा के शरीर में ब्रह्मा से कर्णाधिशायी तक पहुंच करके वहीं पर रहते हैं, अपने कर्मों के अनुसार में कोई भक्त होकर के चले जाते हैं और कोई फिर वहां से
सृष्टि होता है।
इसलिए कृष्ण तत्व अचिंत भेदावे हो ही सकता है, नहीं भी होगा, दोनों भी नहीं होगा, दोनों होगा, अद्भुत तत्व है। और अंत में आज जय भी जन निवास हो देव की जन्म बाद हो जदुवर परिचर भी रक्षण न धर्मन त्रिचर वज्य नग्न सुस्मित सी मुखे न ब्रजपुर बलिता नाम वर्थयन दशम स्कंद के अंत में इस श्लोक को बतलाया गया है। एक श्लोक में सारा भागवत, गागर में सागर, इस प्रकार से बतलाया गया है। इसमें सारा कृष्ण का चरित्र लीला तत्व सब कुछ इसमें नहीं, जयति जयति ईश्वरीय वैशिष्ट है वर्तमान का, अभी भी कृष्ण की जय, वो अभी भी कृष्ण है, अभी भी इनकी लीलाएं हैं, योग माया के प्रभाव से कभी हम प्रकट काल में देखते हैं और फिर उसको हम नहीं देखते, साधक लोग साधन के द्वारा अभी भी उनको उसी रूप में देखते हैं। जयति जन निवासो, ये जन लोगों के हृदय में और विशेष करके जन उनके जो निज जन हैं परिकर भक्त लोग, उनमें भी उनका सबसे निज जन कौन है, गोपियां, उनमें भी चंद्रावली और उनमें भी आराधिका, तो उनके हृदय में निवास करने वाले जन निवास, उनकी जय हो जो उनके हृदय में निवास हो। अच्छा जन निवास हो राधिका जी के हृदय में निवास करते हैं ये तो ठीक है ना? किंतु उनके हृदय में कौन निवास करता है, कृष्ण के हृदय में कौन निवास करता है, वही राधिका जी निवास करते हैं, उनकी जय हो जन निवास। देवकी जन्म वादव देवकी के पुत्र है, ये बात विवाद का विषय है, कोई कहता है, कोई कहता है वो नंदन नंदन यशोदा नंदन देव की जन्म बाद जदवर परिषद सोर दौर भी रह। अब इस देव जन्म बाद देव की जन्म बाद देवकी के जन्म से लेकर और फिर गोकुल में जाना, गोकुल में सारी लीलाओं को करना, फिर वहां से लौटना और लट करके मथुरा में आना, कंस का वध, चारुण इत्यादि का वध, और फिर देवकी वसुदेव के द्वारा उनका उपवीत संस्कार गुरुकुल में पार, और वहां से आ करके उद्धव को बैठ गई, ये सारी लीलाएं उसके अंदर। ऐसे जो कृष्ण लीला करने वाले हैं उनकी जय हो। देवकी जन्म बाद जदुबर परिषद, जदुबर परिषद उनके परिकर, परिकर कौन है, जदुबर श्रेष्ठ जदु, श्रेष्ठ जदु कौन है, एक तो बस देव महाराज इत्यादि, और दूसरे कौन है उनसे भी श्रेष्ठ, पर्जन्य और उनके बेटे लोग नंद उपानंद नंद
उपानंद अभिनंद सुनंद नंदन
ये सब और उनके परिकर परिवार के जितने सब है परिकर और उनके परिकर में विश्वानु महाराज भी हैं नंद बाबा भी हैं तो उनकी बेटी भी उसी परिकर में आई और ललिता विशाखा इत्यादि सब परिकर में आए वृंदावन में जो लाए रास इत्यादि जो हुई सब उसी के अंतर्गत में तदुपर परिषद स्वर दूर भी रसन अपने पूजाओं से दूसरों का दमन किया उनकी पूजाएं कौन है एक तो अपनी पूजा जिसे सबका नष्ट किया और उनकी पूजाएं कौन है बलदेव जी भी हैं और विशेष करके भीम और अर्जुन इत्यादि उनके पूजाएं हैं जिनके द्वारा जगत का भूभार हरण विजय नखन विजिन माने दोस्तों का जो जगत के प्रति अत्याचार इत्यादि है ये सबको हरण किया उन्होंने क्या ये नग्ना सुस्मित सी मुखेना सुस्मित सी मुखेना कौन सा सुस्मित उसके लिए कह रहे हैं मन मत ये सब और भी गोपियां कह रही हैं बेनु गीत में जो कृष्ण का मुख दर्शन किया अक्षुणताम फलमिदम न परम विदाम सख्या पशुन अनुपेश हो बढ़िया से तो कृष्ण जा रहे हैं पीछे से जो बेणी बजाते हुए जा रहे हैं और उनके साथ में श्रीमती राधिका यदि है और ये बजाते हुए सुंदर मुख से आगे जो जा रहे देख करके पशु पक्षी की पतंग सभी ब्रजपुर बनिता नाम यही मुख्य चीज है इसलिए अंत में कहा ब्रजपुर बनिता नाम वर्थय कामदेव प्रेम को बढ़ाया ऐसे श्री कृष्ण को एक ही श्लोक में सारी वंदनाएं हमारे सुखदेव गोस्वामी ने अथवा कहो उनके पिता कृष्ण द्वयी पायन ने ये वंदना की है यही वंदना करके आज का वक्तव्य में समाप्त
श्री कृष्ण एक आदर्श जैसे दिखते हैं यदि राजनीति नेताओं को समझो तो देखो ना महाभारत का युद्ध किस राजनीति से चला है जगत के सबसे बड़े राजनीति वीर देखो तो जगत में सबसे वीर जिसने दृष्टि से देखा है कृष्ण के समतुल्य कोई नहीं यदि गुरु भक्त देखो तो कृष्ण के समान कोई नहीं है वे राजा के लड़के होते हुए भी वसुदेव जी के नर्स को पछाड़ा और जितने पशु है उन्होंने का पालन किया किंतु जैसे कई बच्चे होते हैं उस तरह से सब कुछ छोड़ करके पैदल बलदेव जी के साथ में दूध लिखने संदीपी मुनि के ज्ञान और वहां पर किस प्रकार से अपने गुरु की सेवा अपनी सेवा से उन्होंने ऐसे की सेवा से सबको गुरुआई भी वैसे संतुष्ट थे गुरु जी भी उस समय उनके जितने भी वहां पर छात्र थे शिक्षा के लिए यहाँ तक कि बीच में सुदामा दशर सुदामा 19 किंचा उनके साथ मित्रता की और शाम को गए सूखी लकड़ी लाने के लिए और वर्षा में खिचूते रहे वो सी पर लेकर के खड़े रहे और सवेरा उठते ही गुरु जी आए कृष्ण कहा दामा कहा मैं यहाँ बेटा जी खिचू है गठरी है लकड़ियों की और है कौन पर ब्रह्म गुरु जी के चिराते लिए क्या और गुरु जी आए बोले सारी विद्याएं जो सब कराए उसको हो जाए सब कुछ हो गया गुरु जी की सेवा में जिसको रुचि नहीं है वह परमात्म में नहीं जा सकते हम लोग किस लिए आए हैं घर छोड़ करके किस लिए भगवत भक्ति के लिए आए भगवत भक्ति के लिए आने पर भी कभी कभी फिसल जाते हैं माया आ जाती है उसे बचना ब्रह्मा शंकर की जब भी बड़ी कठिन होती है भगवान ने सब कुछ बनाया इस जगत में गुरु भी दिए सब कुछ दिया अपना संग दिया अनुकूल वायु दिया माया भी दे दी माया आपके पास में हरिदास ठाकुर जैसे ना उनके पास में कैसे गई बेचिया कितना प्रयास किया वो तो हरिदास ठाकुर थे और नहीं तो क्या होगा एक दो बार दो दो बार इसलिए भजन करने के लिए आए हैं गुरु सेवा में तब कर रहो निष्कपट होकर के रहो तो भजन हो सकता है इस तरह से अपना जीवन गुरु सेवा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है गुरु निष्ठा नहीं है और सब कुछ है कुछ नहीं जिलों की गुरु निष्ठा मिल गई है और परमात्मा जी उसके लिए मिल गया वो वृक्ष ही मिल गया गुरु निष्ठा गुरु की संबंध से सेवा करो और कोई कामना हो ठीक कामना गुरु के आए भक्ति के लिए भक्ति सीखो और तब तो कृष्ण की दया होगी भक्ति भी होगी लाली शक्ति की चिंता होगी आप बोलिए तो कुछ
इसको मैं नहीं स्वीकार करता प्रेम ही नहीं हो सकता है कि लोग कहते हैं उनको रसिक रसिक से खरीद जाए किंतु कुछ बेईमान जैसे हैं कृष्ण क्यों है देखो किसी से कोई प्रेम करता है तो जीवन भर उसको छोड़ता है भले ही वो कालक्रम से कहीं अलग भी हो जाए किसी तरह से अलग भी हो जाए दूर भी चला जाए तो अपनी जो प्रियतमा है उसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह वो शादी नहीं कर सकता यदि कृष्ण का गोपियों से आप विशेष करके राधिका जी के साथ में इतना प्रेम है कभी अब वो प्रेम तो है किंतु और भक्तों की भी उनको रक्षा करनी है इसलिए मथुरा में आए और वसुदेव देवकी को कंस कारागार से निकालकर और महाराज उग्रसेन को भी जेल से निकाला और निकाल करके उनकी रक्षा की इसके बाद में द्वारका में भी भक्त हैं मथुरापुरी को साथ में लेकर पूरी वहाँ के जितने भी परिकर थे, लोग थे, सबको लेकर के द्वारका में रहे। किंतु इन प्रेमिकाओं के प्रति उनका कुछ कर्तव्य है या नहीं ब्रजवासी? अच्छा सब ठीक है, आप द्वारका में भी रहिए, युद्ध भी महाभारत का कीजिए, पांडवों की रक्षा कीजिए, आपके बहुत से कर्तव्य हैं। किंतु इन प्रेमिकाओं के साथ में प्रेम का क्या हुआ? आपने विवाह दूसरी जगह में क्यों कर दिया? क्यों विवाह किया? ये प्रेम का लक्षण है। राधा जी से भी किसी ने प्रश्न किया, राधा जी ने प्रश्न किया, तो जो भाई उनको कहता है जिनके बड़े गुण हैं, स्वयं पर ब्रह्म है, सब कुछ है, रस से खर न क्या है, किंतु उनको मैं हमको तो मैं उनको जैसे भी कोई कहे, मैं इसे सहमत नहीं कि वो प्रेमी थे। विवाह क्यों किया? विवाह करने की जरूरत क्या? हाँ, कृष्ण ही तर्क में का उत्तर देते हैं। विवाह किया जी, ऐसा एक समय आ गया मैं से टाल नहीं सका। क्यों नहीं टाल सका? उसने रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथ में अपने पुरोहित के साथ के हाथ या पुरोहित के बेटे के हाथ में पत्र भेजा, मैं आपकी हूं, अब मैं या तो बीज खा लूंगी या किसी तरह से मर जाऊंगी, किंतु श्रीगाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। आप सिंह हैं, मैं आपको अपना दे चुकी, अब फिर नहीं। और कृष्ण सुनते ही गए वहां रुक्मी नगर, कुंडे नगर, और विरोचित रूप में उसको हर करके ले आए, उसके भाई का वध न करके उसको छोड़ दिया, अपमानित करके बलदेव प्रभु पी गए। इसलिए मैंने उसे शादी कर, किंतु ये तर्क ठीक नहीं लगता, नहीं लगता। कभी उसकी चिंता की, अच्छा उसे शादी सत्यभामा से क्यों कर दी? नगदेव जी के साथ में क्यों कर दी? भीष्मक नंदिनी वो और भालू जो थे जामवंती, इन सबसे इतनी क्या? और यही नहीं,
16,000
और उसे भी पूरा नहीं भरा पेट। तो फिर उसे भी विवाह कर लिया, और यदि भी कोई आता ना तो उसे सब बाकी नहीं रखते, वो सबसे विवाह करते। ये प्रेम का लक्षण है। क्या प्रेम का? जो रोते रोते दिन रात
ज्ञान पर तक अब भेद होता है, भेद कहां पर होता है? दो श्याम सत्ताशील वस्तु में भेद होता है। तो संसार के जितने भी वस्तु हैं सभी को हम देखते हैं, सब एक दूसरों से भिन्नता देखी जाती है, अतः प्रत्येक वस्तु में भेद होना चाहिए, भेद भी होता है। परंतु कोई भी वस्तु स्वयं स्वतंत्र सत्ताशील नहीं, नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी संसार में या पर जगत में वस्तुएं हैं सभी परतंत्र स्वतंत्र हैं, यानी स्वतंत्र होते हुए भी पराधीन है, भगवत इच्छा के अधीन, कोई स्वयं स्वतंत्र नहीं। इसलिए भेद रूप में दिखते हुए भी कोई भेद नहीं होता अभेद। अतः गौड़ीय दर्शन में इसका विवेचन हुआ है, स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म। अब स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद है, भगवान में अध्ययन तत्व में ये तीनों चीज होना चाहिए जो कि स्वगत स्वजातीय विजातीय उसमें जड़ता नहीं। तो आत्मा में और शरीर में भेद है, भिन्नता, परंतु भगवान के आत्मा और उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं होता है। देह देही भेदा नास्ते नेसरे विद्यते कति, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो स्वरूप है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही स्वरूप है। ब्रह्म आत्मा कत्त लक्षण, ब्रह्म कहने से बाहरी स्वरूप भगवान का जो स्वरूप है वो कोई भौतिक नहीं है, अप्राकृत चिन्मय। और आत्मा एकत्व लक्षण हम द्वादश स्कंद में, बारहवें स्कंद में भागवत में, तो इसलिए यहां पर कहा है ब्रह्म और आत्मा जो बाहरी स्वरूप और उनकी आत्मा दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर भागवत महात्मा में चल करके यह भी वर्णन होता है आत्मा तो राधे कैव किया, अर्थात तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों में राधा आत्मा कौन है, राधा की। अगर राधा और कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद लक्षण है, इस तरह से भी वर्णन हुआ है। अब भगवान की सारी इंद्रियां जो है चिन्मय है, व्यापक है, अब फिर स्वरूप में स्थित है। अब तो चिन्मय आत्मा में, चिन्मय स्वरूप में कोई जड़त भाव नहीं है। हमारे इंद्रियां जैसे एक एक कार्य करने में एक एक इंद्रिया सबल है, परंतु एक दूसरों का काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान के इंद्रिया क्या है, नतस्य कार्यम करणं च वित्तते, जिनके प्राकृत कोई इंद्रिया नहीं है,